शिशु बपतिस्मा। निम्नलिखित कारणों से शिशु बपतिस्मा बाइबल आधारित नहीं है। एक, चूंकि बपतिस्मा विश्वास का प्रतीक है और एक पापी की क्षमा के लिए ईश्वर से अपील है, यह स्पष्ट है कि किसी के पाप बलिदान के रूप में मसीह में विश्वास के बिना कोई बपतिस्मा नहीं हो सकता है। अधिनियम 22:16 एक शिशु प्रभु का नाम लेने में असमर्थ है। एक पत्रस 3:21 एक शिशु अच्छे विवेक के लिए ईश्वर से अपील करने में असमर्थ है। कुलुस्सियों 2:12 एक शिशु परमेश्वर के कार्य में विश्वास करने में असमर्थ है। बी, धर्मग्रंथ उन लोगों का वर्णन करते हैं जिन्हें बपतिस्मा दिया जाना है और विवरण में शिशुओं को शामिल नहीं किया गया है। मैथ्यू 28:19 सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो जो शिष्य बन गए। मरकुस 16:16 जिसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया वह उद्धार पाएगा। प्रेरितों 2:41 तब जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया था उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 8:12 जब उन्होंने विश्वास किया तो पुरुषों और स्त्रियों ने समान रूप से बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 8:36-37 मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोकता है? यदि आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो आप कर सकते हैं। सी, सीधे शब्दों में कहें तो नए नियम में इसका अभ्यास नहीं किया गया था। शिशु बपतिस्मा का सबसे पहला ऐतिहासिक संदर्भ पेंटेकोस्ट के 150 वर्ष उत्पत्ति से 200 वर्ष आयरेनियस के बाद मिलता है। यह लंबी चुप्पी यह स्पष्ट करती है कि शिशु बपतिस्मा एपोस्टोलिक चर्च द्वारा प्रचलित एक नवीनता थी। यहां तक कि जो लोग शिशु बपतिस्मा की प्रथा का बचाव करते हैं उन्हें भी यह स्वीकार करना होगा कि ऐसा ही है। उदाहरण के लिए एल बेरखोफ के सिस्टमैटिक थियोलॉजी में शीर्षक के अंतर्गत शिशु बपतिस्मा के लिए शास्त्रीय आधार पर विचार करें। वह लिखते हैं, शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि बाइबल में बच्चों को बपतिस्मा देने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें हमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि बच्चों को बपतिस्मा दिया गया था। लेकिन यह आवश्यक रूप से शिशु बपतिस्मा को गैर बाइबल नहीं बनाता है। प्री 632 शिशु बपतिस्मा में विश्वास करने वालों द्वारा दिए गए कुछ तर्क। एक, मार्टिन लूथर अपने बड़े कैटेचिज्म भाग 4 में, मैं शिशुओं का बपतिस्मा मसीह को प्रसन्न करता है, यह उनके स्वयं के कार्य से पर्याप्त रूप से सिद्ध होता है, अर्थात ईश्वर उनमें से कई लोगों को पवित्र करता है जिन्होंने इस प्रकार बपतिस्मा लिया है और उन्हें पवित्र आत्मा दी है, और यह कि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि उनके पास उनके सिद्धांत और जीवन दोनों के कारण पवित्र आत्मा है। यह वास्तव में सरल दिमाग वाले और अनपढ़ लोगों के लिए सबसे अच्छा और मजबूत सबूत है। द्वितीय, आगे हम कहते हैं कि हमें यह जानने की इतनी चिंता नहीं है कि बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति विश्वास करता है या नहीं, क्योंकि उस कारण से बपतिस्मा अमान्य नहीं हो जाता, परंतु सब कुछ परमेश्वर के वचन और आज्ञा पर निर्भर करता है। जब शब्द को पानी में मिलाया जाता है तो बपतिस्मा वैध होता है भले ही विश्वास कम हो, क्योंकि भले ही आज एक यहूदी बेईमानी से और बुरे उद्देश्य से आए और हमें उसे पूरे अच्छे विश्वास के साथ बपतिस्मा देना चाहिए, हमें कहना होगा कि उसका बपतिस्मा फिर भी वास्तविक है, क्योंकि यहां परमेश्वर के वचन के साथ जल भी है, यद्यपि उसे यह उस प्रकार नहीं मिलता जैसा उसे मिलना चाहिए। 3, इसलिए वे अभिमानी अनाड़ी दिमाग हैं जो इस तरह के निष्कर्ष और निष्कर्ष निकालते हैं, जहां सच्चा विश्वास नहीं है वहां सच्चा बपतिस्मा भी नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं अनुमान लगाऊं, यदि मैं विश्वास नहीं करता तो मसीह कुछ भी नहीं है, या इस प्रकार यदि मैं आज्ञाकारी नहीं हूं तो पिता माता और सरकार कुछ भी नहीं है। सोना भी सोना ही है, भले ही वेश्या इसे पाप और शर्म के कारण पहने। बी कैथोलिक, कुछ लोग गलती से यह तर्क देते हैं कि वाक्यांश पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और विश्वास करो और बपतिस्मा लो यह प्रदर्शित करता है कि केवल वे लोग जो पश्चाताप करने के लिए पर्याप्त बूढ़े हैं बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन 2 थिस्सलुनीकियों 3:10 पर विचार करें, यदि कोई काम करना न चाहे तो वह भोजन न करे, यह कोई भी कहता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने बच्चों को भूखा रखना चाहिए क्योंकि वे काम नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्रियाएं पश्चाताप करना, विश्वास करना और कार्य करना केवल उस सीमा तक लागू होती हैं जब कोई व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम होता है। भगवान की कृपा से प्रेरित शिशु उनके विश्वास का उपहार प्राप्त कर सकते हैं। जब मैरी यीशु को सेंट एलिजाबेथ और सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के पास लाई, एलिजाबेथ ने उत्तर दिया, मेरे गर्भ में पल रहा शिशु खुशी से उछल पड़ा। ए डॉट केल्विन शिशु बपतिस्मा को इस आधार पर उचित ठहराया कि विश्वास का बीज ईश्वर के अनुबंधित वादे के कारण विश्वास करने वाले माता पिता के बच्चों में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रकार सुधारित इंजील स्थिति 1, हालांकि कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, शिशु बपतिस्मा अनुग्रह की वाचा की आवश्यक एकता और निरंतरता पर आधारित है। 2, अनुग्रह की वाचा एक एकल आध्यात्मिक वाचा है जो शुरू में इब्राहिम के साथ बनाई गई थी और में पूरी हुई मसीह। 3, कोई विश्वास आवश्यक नहीं है। 4, वाचा की एकता के कारण नई वाचा का चिन्ह एंटी में विश्वासियों के बच्चों को दिया जा सकता है, जैसे इब्राहिम ने अपने शिशु को ईश्वर द्वारा उसके साथ बनाई गई वाचा का चिन्ह दिया था उटी में बेटे। और 5, नई वाचा का चिन्ह बपतिस्मा है जो खतना के पुराने वाचा चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यह घरेलू बपतिस्मा जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार है जिसमें यह माना जाता है कि शिशुओं को बपतिस्मा दिया गया था। 1 कुरिन्थियों 7:14 में विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के बजाय वाचा के बच्चे और छोटे बच्चों को भगवान के राज्य में शामिल किया गया था। मार्क 10:14-16 में राज्य के नागरिकों के लिए छोटे बच्चों की समानता के विपरीत एक खंडन। बाइबल में कहीं भी एक एकल आध्यात्मिक अनुग्रह की वाचा का उल्लेख नहीं है जो किसी तरह युगों तक फैली हुई है और इब्राहिम को मसीह से जोड़ती है, जबकि इब्राहिम के साथ उनका शारीरिक संबंध उन्हें इब्राहिम वाचा के तहत अस्थाई भौतिक आशीर्वाद का हकदार बनाता था, लेकिन यह उसके वंशजों को किसी भी शाश्वत आध्यात्मिक आशीर्वाद का हकदार नहीं बनाता था जब तक कि वे आध्यात्मिक रूप से अपने पिता इब्राहिम की तरह नहीं होते, यानी वे ईश्वर में विश्वास की तलाश कर रहे थे। ईश्वर ने कभी भी किसी भी समय अनुग्रह के अलावा किसी अन्य आधार पर किसी को आध्यात्मिक आशीर्वाद देने का वादा नहीं किया है, और अनुग्रह अपनी परिभाषा के अनुसार न केवल सभी मानवीय योग्यताओं को बाहर कर देता है, इसमें भौतिक और प्राकृतिक वंश को भी शामिल नहीं किया गया है। यह पुराने और नए दोनों नियमों में सत्य है, चाहे वाचा कोई भी हो। विश्वासियों के बच्चे बहुत विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हैं। वे अपने माता पिता की प्रार्थनाओं के विषय हैं, उन्हें ईश्वर के वचन और उनके माता पिता और अन्य ईसाइयों की गवाही से अवगत कराया जाता है और उनसे आग्रह किया जाता है कि जब तक प्रभु मिल सकते हैं तब तक उन्हें खोजें और जब वह निकट हों तो उन्हें पुकारें। लेकिन एंटी में कहीं भी हमें उन्हें बपतिस्मा देने के लिए नहीं कहा गया है जब तक कि वे इस बात का सबूत नहीं देते कि वे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के माध्यम से ईश्वर में व्यक्तिगत विश्वास रखते हैं। सिर्फ इसलिए कि वे विश्वासियों के बच्चे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें भगवान द्वारा चुना गया है, नहीं उनका नई वाचा में कोई हिस्सा है। उन्हें बपतिस्मा देना जैसे कि उन्होंने किया या इस आशा में कि वे करेंगे बाइबल के विरुद्ध है। उन्हें एक संकेत के रूप में बपतिस्मा देने के लिए कि वे वाचा के बच्चे हैं जिन्हें भगवान के दयालु प्रस्तावों का जवाब देने की आवश्यकता है ओटी के प्रकारों और छायाओं में वापस जाना है। अब्राहम और मूसा के दिनों में जब भगवान इज़राइल तैयार कर रहे थे और दुनिया में एक नए राष्ट्र और ऐसे लोगों के उदय के लिए जो उसे जानेंगे, उससे प्यार करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। वह खतना बपतिस्मा का एक भविष्य सूचक प्रकार था जो कुलुस्सियों 2:11-12 में देखा जाता है। उसी में तुम्हारा भी, जो शरीर के पापों को दूर करके मसीह के खतने के द्वारा बिना हाथ के खतना के अनुसार किया गया बपतिस्मा में उसके साथ दफनाया गया, जिसमें आप भी परमेश्वर के कार्य में विश्वास के माध्यम से उसके साथ पुनर्जीवित हुए, जिसने उसे मृतकों में से जिलाया। यह भाषा शिशुओं पर लागू नहीं हो सकती। एक शिशु के कोई पाप नहीं होते जिन्हें क्षमा किया जा सके, और एक शिशु को ईश्वर के कार्य में कोई विश्वास नहीं होता। अनजाने अविश्वासी शिशुओं का बपतिस्मा बपतिस्मा के लिए बाइबल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उतना ही गैर बाइबल और अप्रभावी है जितना कि वयस्कों के लिए। एक बच्चा बपतिस्मा लेने लायक कब हो जाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेषकर माता पिता और दादा दादी के लिए। इस प्रश्न का वास्तव में शास्त्रों में कोई स्पष्ट संक्षिप्त उत्तर नहीं है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि यह गलत प्रश्न है। यदि हाँ, तो फिर प्रश्न क्या होना चाहिए? एक अधिक उपयोगी प्रश्न यह हो सकता है, बपतिस्मा लेने के लिए एक बच्चे या किसी भी व्यक्ति को क्या जानना और समझना चाहिए? आध्यात्मिक मामलों को समझने की परिपक्वता और क्षमता हमेशा व्यक्ति की उम्र पर निर्भर नहीं करती है। इस प्रश्न का उत्तर, बपतिस्मा लेने के लिए एक व्यक्ति को क्या जानना और समझना चाहिए, का उत्तर शास्त्रों में है। इन उत्तरों को प्रश्नों के रूप में रखा जा सकता है, जिनका उत्तर आप बच्चे से पूछ सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होने के लिए एक व्यक्ति को अवश्य देना चाहिए। 1. ईश्वर कौन है? 2. पाप क्या है? 3. जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? 4. खो जाने का क्या मतलब है? 5. बचाए जाने का क्या मतलब है? 6. यीशु कौन है? 7. यीशु को सूली पर क्यों चढ़ाया गया या यीशु को क्यों मरना पड़ा? 8. बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या करने का वादा करता है? 9. इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि हमारे पाप यीशु के खून से धुल गए हैं? 10. यह कहने का क्या मतलब है कि यीशु आपके लिए मरा? इसके अलावा व्यक्तिगत प्रकृति के ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1. क्या आप खो गए हैं? 2. आप परमेश्वर के सामने दोषी क्यों महसूस करते हैं? 3. आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं? 4. क्या आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है? इसका क्या मतलब है? 5. क्या आपको जीसस में विश्वास है? इसका क्या मतलब है? यीशु पर विश्वास करने का क्रूस पर उसकी मृत्यु से क्या संबंध है? 6. क्या आप स्वयं को और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करने और उन्हें अपना प्रभु स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यीशु के प्रभु होने का क्या अर्थ है? टिप्पणियां। 1. इन सभी प्रश्नों का उत्तर साधारण हाँ या ना में नहीं, बल्कि बच्चे की अपनी समझ की अभिव्यक्ति के साथ दिया जाना चाहिए। 2. एक बच्चे या वयस्क को औचित्य, प्रायश्चित, सुलह, प्रायश्चित, मोचन, पुनर्जनन आदि जैसे धार्मिक शब्दों को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे इन सवालों का जवाब अपनी शब्दावली में सरल शब्दों में दे सकते हैं। 3. उन बच्चों से सावधान रहें जो मुख्य रूप से वयस्कों को खुश करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। 4. नियमित भागीदारी में बाइबल पढ़ना और प्रार्थना, पूजा, उपदेश सुनना और कक्षाएं आध्यात्मिक जागरूकता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 5. बच्चे को आज्ञाकारिता के संदर्भ में भगवान के प्रति प्रतिबद्धता बनाने में सक्षम होना चाहिए।